ఓం శాంతి, గుడ్ మార్నింగ్ అండ్ నమస్కార్. ఇట్స్ అ గ్రేట్ ప్లెజర్ టు సీ ఆల్ ఆఫ్ యూ హియర్. అప్నే బాబా కే ఘర్ మే హమ్ భీ ఆప్కా ఇస్ సత్ర మే బహుత్ బహుత్ దిల్ సే స్వాగత్ కర్తే హై. ఆజ్ కా జో సెషన్ హై, లైఫ్ అ యూనిక్ అపర్చునిటీ. ఆజ్ కా సెషన్ మే ఏక్ బహుత్ సింపుల్ అనుభవ్ కే సాథ్ స్టార్ట్ కరుంగా. यह अनुभव मुझे बहुत प्रिय लगता है और हमेशा इस मंच पर मैं ये दोहराता हूं. मुंबई में कभी कभी ये जो पोस्ट ग्रेजुएट एमबीए बच्चे होते हैं ना, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, उनका जब सिलेक्शन होता है तो कभी कभी यूनिवर्सिटी के लोग मुझे कहते हैं कि सर आप उनका इंटरव्यू लीजिए. और मुझे इंटरव्यू पैनल में बैठना भी बहुत बहुत अच्छा लगता है. तो जब कोई कैंडिडेट आता है और मैं उसका बायोडाटा देखता हूं और मैं कहता हूं माई गॉड यू आर एन इंजीनियर, वो कहता है यस. तो मैं उनको कहता हूं कि चार साल में इंजीनियरिंग में क्या पढ़ा मैं बिल्कुल पूछने वाला नहीं हूं. तो बहुत खुश होते, थैंक यू सर, राइट. लेकिन एक प्रश्न जो मुझे बहुत पूछना बहुत पसंद आता है कि जीवन क्या है, व्हाट इज लाइफ. तो कुछ स्टूडेंट्स मुझे स्टैंडर्ड जवाब देते हैं. जैसे कुछ बच्चे कहते हैं लाइफ इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन, जीवन एक बहुत सुंदर यात्रा है मंजिल नहीं. कुछ बच्चे जवाब देते सर लाइफ इज अ चैलेंज, सर जीवन एक बहुत बड़ा संघर्ष है. सुनते ही साथ मुझे समझ में आ जाता है कि ये बंदा लोकल ट्रेन चढ़कर आया है, क्योंकि बॉम्बे में लोकल ट्रेन चढ़ना संघर्ष, उतरना तो उससे बड़ा संघर्ष. देयर वाज वन बॉय हु वाज स्ट्रगलिंग विद द आंसर्स ऑफ लाइफ. जब इंटरव्यू खत्म हुआ तो मैंने उस लड़के को कहा इट वॉज वेरी नाइस मीटिंग यू, वी विल लुक फॉरवर्ड टू मीट यू अगेन. तो लड़का थैंक यू करकर दरवाजे तक जाता है, कुछ क्षणों तक वेट करता है, वापस आता है, मुझे देखकर कहता है सर इफ यू डोंट माइंड कैन आई गेट योर मोबाइल नंबर. मैं कहा व्हाट, बोला सर प्लीज आप अपना मोबाइल नंबर शेयर करेंगे क्या. कितनों को मोबाइल नंबर देते हैं, वाई टू क्रिएट अ सीन. मैं कहता नोट करो, फटाफट नोट किया, थैंक यू सर करके निकला. छह आठ मिनट के बाद ना मेरे मोबाइल में एक बहुत सुंदर मैसेज आया और जब हमने पढ़ा तो जीवन की एक बहुत सुंदर परिभाषा, तो मैंने अपने पैनलिस्ट के साथ शेयर किया, सबको बहुत अच्छा लगा. तो एक फैकल्टी ने कहा सर ये जो लड़का गया ना शायद इसी ने भेजा होगा. मैंने कहा मैं वेरीफाई करता हूं. तो मैं उसी नंबर पे रिंग किया, उसी लड़के ने वहां से फोन उठाया. तो मैंने बहुत प्यार से उसको पूछा माय डियर बॉय अचानक जीवन के बारे में कहां से पता चला. ये लड़का मुझे फोन पर जवाब देता है सर गूगल सर्च इंजिन सर. उस दिन मैंने एक बात सीखा कि हमारे बच्चे जो है ना जीवन के बारे में गूगल में ढूंढ रहे हैं, क्योंकि शायद हम माता पिता और हम शिक्षक बच्चों को जीवन क्या है बता नहीं पा रहे. मैंने अपने विद्यार्थी से जो सीखा मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा, मुझे ये बहुत पसंद आता है. उस लड़के ने लिखा था देखो तो ख्वाब है जिंदगी, लाइफ इज अ ड्रीम. देखो तो ख्वाब है जिंदगी, पढ़ो तो किताब है जिंदगी, सुनो तो ज्ञान है जिंदगी, लेकिन ईश्वर कहते हैं मीठे बच्चों प्यारे बच्चों सदा मुस्कुराते रहो तो आसान है जिंदगी. सदा मुस्कुराते रहो तो आसान है जिंदगी, राइट. कितना सुंदर सा प्यारा सा डेफिनेशन है. और आज का जो थीम भी है इट इज वाह जिंदगी वाह कैसे बनाए, और उसमें क्या अपॉर्चुनिटी हमें करना है. मैं आज का सत्र एक बहुत सुंदर कहानी के साथ शुरुआत करता हूं. ये कहानी एक राजा की है. राजा अपने प्रजा के प्रति बहुत श्रेष्ठ विचार रखते थे और वो महसूस करते थे कि उनके राज्य में सभी प्रजा बहुत सुखी हो. तो उसके लिए राजा क्या करते थे, बीच बीच में ना वेश बदल करके वो पूरा राज्य का भ्रमण करते थे और पता लगाते थे कि राज्य कारोबार कैसा चल रहा है. एक दिन राजा ने अपना वेशभूषा बदल कर, सुबह सुबह का वक्त था, जैसे ही वो अपने राज्य महल से बाहर निकले तो उस दिन एक नया संतरी वहां पोस्टेड था. और जैसे ही उसने एक नए व्यक्ति को देखा तो इमीडिएटली रोक लिया. और उस संतरी ने, क्योंकि उसने राजा को नहीं पहचान पाया, राजा से तीन प्रश्न पूछा. सबसे पहला प्रश्न, आप कौन हो? दूसरा प्रश्न, आप यहां क्या कर रहे हो? और तीसरा प्रश्न, आपको जाना कहां है? और जैसे राजा ने ये तीन प्रश्न सुने उनको इतना अच्छा लगा तो उसने मुस्कुराते हुए संतरी से पूछा संतरी क्या ये प्रश्न आप हर एक व्यक्ति से पूछते हो क्या? तो संतरी ने कहा आप मेरा प्रश्न का जवाब दीजिए, आप उल्टा प्रश्न मुझको नहीं पूछो। अब वो संतरी होते ना, तो राजा ने फिर पूछा, हे संतरी आप ये प्रश्न हरेक से पूछते हो क्या? तो फिर वो संतरी का संस्कार आने लगे, जोर से उन्होंने कहा, आप मेरा प्रश्न का जवाब दीजिए, उल्टा प्रश्न मत पूछो। तो राजा ने इमीडिएटली अपने ओरिजिनल वेशभूषा में आए, और जैसे ही संतरी ने उनको पहचाना तो उन्होंने कहा, हे राजन आई एम सो सॉरी, मैं आपको पहचान नहीं पाया। तो राजा ने कहा, हे संतरी आप तीन प्रश्न फिर से पूछो। राइट उसने कहा, नहीं राजन अब मैंने आपको पहचान लिया, मैं आपसे नहीं पूछूंगा। तो बोला, अच्छा ये प्रश्न आप हरेक से पूछते हो क्या? उसने कहा, नहीं राजन अगर मैं किसी को पहचानता नहीं हूं तो उनसे मैं पूछता हूं। तो राजा ने कहा, अच्छा हर महीने आपको यह कर्म करने के लिए आपको राजकोष से कितना धन मिलता है? तो संतरी ने कहा, राजन मुझे हर महीने 10 अशरफियां मिलती है। तो राजा ने मुस्कुराते हुए संतरी को कहा, हे संतरी एक काम करना, हर दिन मेरे दरबार में आना, ये तीन प्रश्न हर दिन मुझसे पूछना, मैं हर दिन आपको 10 अशरफियां दूंगा। राइट ये तीन प्रश्न जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न क्या था? आप कौन हो? दूसरा प्रश्न, आप यहां कर क्या रहे हो? और तीसरा प्रश्न, आपको जाना कहां है? जहां तक फर्स्ट प्रश्न का सवाल है, जब आप यहां पर आए थे तो एक साइंटिस्ट बनकर आए थे, एक इंजीनियर बनकर आए थे, एक ऑफिसर बनकर आए थे, एक मैनेजर बनकर आए थे। लेकिन आज सुबह आदरणीय उषा दीदी जी का सेशन आपने सुना होगा तो काफी कुछ समझ बात आई होगी। और अगर आज मैं आपसे पूछूंगा आप कौन हैं तो क्या जवाब देंगे? यस, मैं ये शरीर नहीं हूं, लेकिन इस शरीर में रहने वाली मैं एक चैतन्य शक्ति हूं। हमें याद आता है कुछ वर्ष पहले हम मुंबई के एक इंडस्ट्री में, मुझे इन्विटेशन मिला तो वहां के जो HR के वाइस प्रेसिडेंट थे उन्होंने मुझे फोन किया, बोला स्वामीनाथन वी इन्वाइट यू टू गिव अ लेक्चर टू आर पीपल, और सेशन था ऑन स्ट्रेस मैनेजमेंट, तनाव प्रबंधन। तो उन्होंने मुझसे पूछा तनाव प्रबंधन का टूल क्या है? तो मैंने कहा, सर हमारे पास सिर्फ एक टूल है और वो है स्व सशक्तिकरण करना, सेल्फ एम्पावरमेंट। तो उन्होंने कहा, स्वामीनाथन क्या ये सेल्फ एम्पावरमेंट करने से क्या हमारा तनाव प्रबंधन हो जाएगा क्या? मैंने कहा, ये तो आपको एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा सर। तो बोले, ये सेल्फ एम्पावरमेंट में आप करते क्या हो? तो मैंने कहा, बहुत सिंपल है सर, हम कौन है ये हम समझते हैं। राइट तो समझ नहीं पा रहे थे, तो मैंने कहा, सर मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, बहुत नम्रता पूर्वक पूछता हूं कि आप कौन हो? तो ही वॉज नॉट वेरी कंफर्टेबल विद द क्वेश्चन। तो मैंने बहुत विद लॉट्स ऑफ ह्यूमिलिटी मैंने उनसे पूछा, सर मेरा बहुत सिंपल बेसिक क्वेश्चन है कि आप कौन हो? तो उन्होंने सोचकर कहा, आई एम द वाइस प्रेसिडेंट HR ह्यूमन रिसोर्सेस। मैं कहा, नहीं सर वो आपका पोस्ट है, आप कौन हो? तो उसने कहा, आई एम वाइस प्रेसिडेंट HR। मैं कहा, नहीं सर वो आपका डेजिग्नेशन है, आप कौन हो? आई एम द वाइस प्रेसिडेंट HR, कुर्सी नहीं छोड़ रहे अपनी। फिर मैंने पूछा, अच्छा सर बताइए 60 वर्ष के बाद आप क्या बनेंगे? तो सोचकर कहा, 60 वर्ष के बाद रिटायर्ड वाइस प्रेसिडेंट HR। किसको हम पकड़कर चलते हैं? हमारा पोस्ट, पोजिशन, डेजिग्नेशन, कास्ट, क्रीड, जेंडर, देश, राष्ट्र, कितने मुखौटे पहन लिए। लेकिन ये सारे मुखौटे पहनते पहनते समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं उसमें कहां मैं भटक गया हूं। एक अनुभव मैं कहीं सुन रहा था, जनरल मैनेजर ऑफ अ वेरी लीडिंग मल्टीनेशनल बैंक रिटायरमेंट के बाद कुछ उनको अपने पेंशन के काम की जरूरत थी, तो कुछ दिनों के बाद जब वो अपने बैंक में आया तो काउंटर में एक नया ऑफिसर था, यंग प्रोबेशनरी ऑफिसर। तो इसने अपने पेपर्स दिए तो वो ऑफिसर इनको पहचान नहीं पाए। तो कुछ समय के बाद वो बैंक के जो दूसरे स्टाफ मेंबर्स ने जब देखा, ये तो हमारे जनरल मैनेजर साहब है, तो सब लोग आइए आइए सर अंदर आइए, और बैठकर जब उनसे बात करने लगे तो इस यंग ऑफिसर को पता चला कि ये हमारे ब्रांच के या हमारे बैंक के पूर्व जनरल मैनेजर थे। तो वो प्यार से गए और उस सर को कहा, सर आई एम वेरी वेरी सॉरी, मैं आपको आइडेंटिफाई नहीं कर पाया था, मैं माफी चाहता हूं, मुझे आपको और थोड़ा रिस्पेक्ट से बात करना था। उसने कहा, नहीं जीवन में एक चीज मैंने सीखी है, लाइफ इज अ गेम ऑफ चेस। चेस होता ना, और उस जनरल मैनेजर ने अपने ऑफिसर को जीवन का एक बहुत सुंदर सिद्धांत सिखाया कि लाइफ इज अ गेम ऑफ चेस, जब तक गेम चल रही है राजा और प्यादा का अपना महत्व है, लेकिन जैसे ही गेम खत्म होता है तो राजा और प्यादा एक साथ वो चेस बॉक्स के अंदर आ जाते हैं। और जनरल मैनेजर ने अपने ऑफिसर को कहा, जितना जल्दी आप इस बात को समझ जाओगे आप जीवन को एक बहुत सुंदर अपॉर्चुनिटी महसूस कर पाओगे। दोस्तों, मैं एक चैतन्य शक्ति हूं, आत्मा हूं, सोल हूं, रूह हूं, ये बात हमारे संस्कृति में, हमारे संस्कार में है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन मुझे बहुत खुशी है क्योंकि ये एक साइंटिस्ट और इंजीनियर्स विंग का कॉन्फ्रेंस है, तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा मैं एक साइंटिफिक सिद्धांत आपके सामने रखूं ताकि आप उस बात को महसूस करें। और मुझे बहुत खुशी होती है बताते हुए, पहले हम लोग जब 10-15 साल पहले कोई भी एक इंजीनियरिंग कॉलेज में जाकर स्वयं की बात करते थे तो शायद हमारे इंजीनियरिंग बच्चों को यह बात समझ में नहीं आती थी। खुशखबरी में यह बता रहा था कि भारत में जो 23 IITs हैं उसमें वन ऑफ द IIT इज IIT गांधीनगर। उन्होंने एक नया डिपार्टमेंट स्टार्ट किया है, दैट इज कॉल्ड एज द डिपार्टमेंट ऑफ कॉग्निटिव साइंसेस, जहां पर मैं कौन हूं या ये इमोशंस, ह्यूमन इमोशंस पर काफी कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहा है। देर आए दुरुस्त आए, बट वी आर 60 years बिहाइंड जर्मनी। मैं आत्मा वो डिसीशन लेता हूं, कैसे वो डिसीशन लेता हूं आज मैं आपको छोटे से वीडियो के द्वारा बताऊंगा। एंड दिस एक्सपेरिमेंट वॉज डन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन।
Take part in an experiment designed to explore the source and timing of my decisions. I'm quite apprehensive because the results could have a profound effect on how I live my life.
ये एक एक्सपेरिमेंट, क्योंकि वो इंग्लिश में बोल रहे हैं तो शायद उसके शब्द आपको कहां तक समझ में आएंगे, लेकिन मैं इसका हिंदी अनुवाद करता रहूंगा कि हम लोग जो भी निर्णय करते हैं, जो भी डिसीजन लेते हैं, वो कौन करता है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे।
I will reveal who is in charge of my decisions. Is it the conscious me or an unconscious mass of grey matter that I have no control over?
So this is going to be looking at my brain.
Yeah, this is looking
another day, another scanner. The experiment is simplicity itself. I have to randomly decide and then immediately press one of these left or right buttons.
इस व्यक्ति को दोनों हाथ में एक स्विच दे दिया गया और उसको स्कैनर के अंदर डाल दिया गया और उसको कहा गया कि रैंडमली आप लेफ्ट या राइट स्विच को प्रेस करना। सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है लेकिन रिजल्ट्स बहुत ब्यूटीफुल है।
At the same time, the scanner system records when my brain made the decision and the computer when I physically pressed the button.
Okay, Marcus, we are ready to start.
The test didn't take long, and to be honest, it's not terribly exciting. But I'm hoping the results will be a bit more interesting.
आप अंदाज लगा सकते कि इस व्यक्ति को अंदर लेकर गए, इसको randomly press करने के लिए कहा, Mr. John waiting outside, वो इस बात को, इसके decision को analyze कर रहे हैं। Results पता क्या था? मैं results पहले बता देता हूँ, फिर आप video में देखना। Results ये था कि वो व्यक्ति ने वो स्विच प्रेस करने के 6 seconds पहले मिस्टर जॉन वेटिंग आउटसाइड 100% एक्यूरेसी के साथ बता सकते हैं कि आप कौन सा स्विच प्रेस करने वाले, 6 seconds बिफोर। एंड इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी 6 seconds इज वेरी बिग अमाउंट ऑफ टाइम। हम देखते हैं।
In your case, up to 6 seconds before you make up your mind, we can predict which decision you're going to make.
6 seconds?
Absolutely, 6 seconds, yeah.
6 seconds? So I was conscious of making a decision to press my right finger down. You're saying that 6 seconds earlier, my brain had already made that decision?
Exactly. So here we can show you how we did it. In this region, there's...
अब वो एक दिखा रहे हैं पॉइंट पर, कहां पर डिसीजन का देखा जाता है। यहां से क्लाइंट को ड्रॉप करिए, यहां से क्लाइंट को ड्रॉप करिए, जैसे सुबह बताया हो गया। हाइपोथैलेमस ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में पॉइंट ऑफ लाइट। तो जब आत्मा वो डिसीजन लेती है तो उसके सेंसर के द्वारा बाहर वाले व्यक्ति को समझ में आता है कि आप क्या डिसीजन लेने वाले हो। वहां से लेकर जब तक मेरे हाथों तक पहुंचे 6 सेकंड टाइम निकल जाता है और उसके बाद वो प्रेस करता है. देखिए,
अ पैटर्न ऑफ ब्रेन एक्टिविटी दैट इमर्जेस बिफोर यू मेक अप योर माइंड दैट टेल्स अस व्हिच वे यू गोइंग टू डिसाइड एंड दीस ब्लू रीजंस दे गेट मोर एक्टिव व्हेन यू आर गोइंग टू चूज लेफ्ट एंड द येलो रीजंस गेट मोर एक्टिव व्हेन यू आर गोइंग टू चूज राइट.
दैट्स अ बिट फ्राइटनिंग. इट्स सॉर्ट ऑफ implies therefore my conscious
खुशी की बात है. आज वो विज्ञान वो सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है जो हमारे आध्यात्म में था. तो सबसे पहली बात, मैं कौन हूं? आज तक मैं शरीर समझकर चल रहा था, आज मुझे समझ में आया कि मैं शरीर नहीं हूं लेकिन इसमें रहने वाली मैं एक चैतन्य शक्ति हूं. दूसरी बात, आप यहां पर क्या कर रहे हो? आज एक काम करना है, जब ये सेशन खत्म हो जाएगा तो बाहर के अगर किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे कि आप कौन हो तो वह अपना पोस्ट पोजिशन बताएगा और जब आप कहेंगे कि नहीं हमने यहां पर सीखा कि मैं शरीर से अलग एक चैतन्य शक्ति हूं तो वो आपको घूर के देखेगा और कहेगा यह ज्ञान जानने से मेरे जीवन में क्या फर्क पड़ता है. व्हाट डिफरेंस डज इट मेक टू माय लाइफ? राइट, डज इट मेक एनी डिफरेंस? भाई यहां पर आपने समझा कि मैं एक चैतन्य शक्ति हूं. इस संसार में इतने सारे लोग हैं जो इस बात को महसूस नहीं करते फिर भी वो जीवन जी रहे हैं ना. तो स्वयं को आत्मा समझने से क्या फर्क पड़ता है? सबसे बड़ा फर्क यह पड़ता है कि जब हम अपने आप को शरीर समझते हैं तो पूरा जीवन भर हम उस अपॉर्चुनिटी को ढूंढते हैं जो शरीर की रिक्वायरमेंट है. और शरीर की रिक्वायरमेंट क्या है, शरीर की जरूरत क्या है? पुराने जमाने में हमने एक फिल्म देखी थी, रोटी कपड़ा और मैंने अपने स्टूडेंट से पूछा तो एक खड़े होकर कहता सर ये आउटडेटेड सिलेबस हो गया. मैंने कहा नया सिलेबस क्या है? बोला सर रोटी कपड़ा मकान और मोबाइल सर. यस, ये हमारे शरीर के रिक्वायरमेंट है. लेकिन जैसे ही हम समझते हैं कि मैं आत्मा हूं तो आत्मा की रिक्वायरमेंट क्या है? आत्मा की रिक्वायरमेंट वो सारे आत्मा के दिव्य गुण, द वैल्यूज ऑफ द सेल्फ. लाइफ इज एन अपॉर्चुनिटी. क्या आज तक जिंदगी भर हम शरीर के रिक्वायरमेंट के लिए हम भागदौड़ कर रहे हैं? अब जरूरत है कि हम उस अपॉर्चुनिटी को ढूंढें जहां आत्मा की रिक्वायरमेंट के लिए हम थोड़ा सा समय दें. अक्सर जब हमारे घर में जब कोई रिलेटिव्स आते हैं तो बच्चों से पूछते हैं, बच्चों आपको जीवन में क्या बनना है? या कभी कभी बड़े बच्चे होते तो उनसे पूछते हैं व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो? तो बहुत सारे बच्चे जवाब देते हैं आई एम वर्किंग एज एन इंजीनियर, I am working as a scientist, I am working as an officer. Absolutely okay. अब थोड़ा सा उनको एक करेक्शन करना कि इंजीनियर डॉक्टर ऑफिसर मैनेजर इस संसार में बहुत बनते हैं, बट बिकम अ गुड इंजीनियर, बिकम अ गुड ऑफिसर, बिकम अ गुड मैनेजर. लाइफ इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर गुडनेस. और उसके लिए 3 बातें हमें करनी पड़ेगी और समय निकालना पड़ेगा. सबसे पहले वी हैव टू एक्सप्लोर गुडनेस, नंबर 2 वी हैव टू एक्सपेरिमेंट गुडनेस एंड नंबर 3 वी हैव टू एक्सपीरियंस गुडनेस. क्योंकि आत्मा को वो दिव्यता, आत्मा को अच्छाई बहुत अच्छा लगता है. एक्सप्लोर अर्थात खोज करना, टू डिस्कवर. राइट, कभी कभी आश्चर्य होता है जब बच्चों से हम लोग ये गुडनेस की बात करते हैं तो आश्चर्य होता है. माता पिता कहते नहीं नहीं स्वामी भाई आजकल की दुनिया बहुत खराब है, अगर हमारे बच्चे अच्छे बन गए तो शायद जीवन जीना मुश्किल होगा. राइट, जब माता पिता से सुनते हैं ना तो सचमुच लगता है कि हमने जीवन को ठीक तरह से समझा ही नहीं है. और अगर यह प्रश्न, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जब कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाएगी तो आपके दोस्त आपकी सखियां आपस में बात करेंगे और कहेंगे ब्रह्मा कुमारी इसके शांतिवन में सुनना सुनाना तक तो बहुत अच्छा था लेकिन प्रैक्टिकल ये बिल्कुल नहीं होगा. ये आप लोग आपस में डिस्कस जरूर करेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूं. और अगर ये डिस्कशन चल रहा है इसका मतलब क्या है कि हमने वो खोज नहीं किया, डिस्कवर नहीं किया. और इसके लिए बहुत बहुत जरूरत है, ईश्वर भी कहते हैं अपने बचपन के दिनों को जरूर याद करना. फिर से हमें अपने वो बचपन के स्वरूप को लेकर आना पड़ेगा जहां पर हम शुद्ध थे, स्वच्छ थे, पवित्र थे. अब बचपन में बच्चा कैसे होता है, सो क्रिएटिव, सो रचनात्मक, वो हर पल प्रश्न अपने आप से पूछता रहता है. वाई, हाउ, वाई गुडनेस, हाउ गुडनेस, व्हाट इज द मैकेनिज्म फॉर गुडनेस. और जीवन एक अपॉर्चुनिटी में सारे प्रश्नों का खोज हमें स्वयं करना पड़ेगा। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है ना, आप उसकी मां से पूछेगा, हर मिनट वो क्वेश्चन पूछेगा, मामा व्हाई डज द स्काई लुक ब्लू। मां उस प्रश्न का जवाब ढूंढने के पहले वो छोटू दूसरे प्रश्न में पूछता है, मामा हाउ डज द ट्रेन रन ऑन द ट्रैक। मामा थोड़ा बहुत तो मम्मा ट्राई करती है। जब मम्मा बच्चे का हर प्रश्न का जवाब नहीं दे पाती तो मम्मा क्या करती है, अपना ब्रह्मास्त्र यूज करती है। मम्मा का ब्रह्मास्त्र क्या है? नहीं, पापा से नहीं पूछते। मम्मा को पता कि पापा को कुछ नहीं पता, तो ज्यादा रिस्क नहीं लेते, पापा से तो बिल्कुल पूछते नहीं है। मम्मा के पास एक ब्रह्मास्त्र होता है, वो बच्चे से कहती है, बच्चा जब तू स्कूल जाएगा ना, तेरी टीचर तेरे को सब कुछ पढ़ाएगी। और ये छोटू पहला दिन वेरी एक्साइटेड, टाई सूट बेल्ट पहनता है, टाई पहनकर चालू हो जाता है, स्कूल जाता है वेरी एक्साइटेड, Why does the sky look blue? Why does the sky look blue? जैसे ही वो क्लासरूम पर जाता है उसको उसको टीचर स्टार्ट करती है, बच्चों A for apple, and this boy is confused. मैं तो यहां पर आया था ये जानने के लिए कि why does the sky look blue? ये apple कहां से आ गया? वो दूसरा दिन वेट करता है, तो दूसरा दिन it is B for bat, तीसरा दिन वेट करता है it is C for cat, चौथा दिन उसका इलास्टिक लिमिट ब्रेक हो जाता है, वो खड़े होकर पूछता है, मैडम प्लीज टेल मी व्हाई डज द स्काई लुक ब्लू। मैडम उसको घूर के देखती है और कहती है, दिस इज सेवन स्टैंडर्ड सिलेबस, टुडे इट इज डी फॉर डोंकी। खत्म, वहां उसका क्रिएटिविटी खत्म, वहां उसका गुडनेस खत्म होने लगता है, रचनात्मकता। और जैसे जैसे ये बच्चा इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंचता है तो हम प्रोफेसर के लिए इतना आसान हो जाता पढ़ाना, क्योंकि वो छोटू अभी बड़ा हो गया है, वो मुझे घूर के देखता और कहता, सर आपको जो बोलना है बोलिए सर, हमारे तरफ से कोई प्रॉब्लम है, कंटिन्यू कंटिन्यू, पढ़ाइए पढ़ाइए ना। yes. उनके वो प्रश्न पूछने की, उसकी खोज की जो क्रिएटिविटी थी, एजुकेशन ने डिस्टर्ब किया। मैं एक बार अपने इंजीनियरिंग क्लासरूम में गया तो मैंने देखा सारे बच्चे एक ही प्रकार के टी शर्ट पहने, तो और उसमें एक स्लोगन लिखा था। मैंने कहा, बच्चे क्या लिखा है? तो सब लोग उसको ना ढाक रहे थे, तो मैंने कहा बताओ बताओ। नहीं सर, सुबह से इतने टीचर्स का फायरिंग मिला। मैंने कहा बताना क्या लिखा है। तो एक बच्चे ने रिस्क उठाया और उस सारे स्लोगन सभी बच्चों ने लिखा था, आई वॉज बॉर्न इंटेलिजेंट बट एजुकेशन रियूंड मी, आई वॉज बॉर्न इंटेलिजेंट बट एजुकेशन रियूंड मी। हमारा सारा जो एजुकेशन है, इट्स ऑलवेज एक्सटर्नल बट नथिंग टू डू अबाउट इंटरनल। दो तीन दिन जब आप यहां बैठे हैं ना, तो मैं आपसे सिंपल रिक्वेस्ट करता हूं, हम अपने मन को फिर से वो बचपन के मन को लेकर आए। सुमन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज खोज करना, एक्सप्लोर द गुडनेस दैट इज देयर विद इन अस। नंबर टू इज एक्सपेरिमेंट करना, एक्सपेरिमेंट। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं, जो सारे इन्वेंशंस और डिस्कवरीज इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, इट इज टू क्रिएट हैप्पीनेस, कंफर्ट, गुडनेस अमंग ह्यूमैनिटी। आज आप यहां पर बैठ रहे हैं, मेरी आवाज सुन रहे हैं, ये साइंस टेक्नोलॉजी का देन है, राइट? तो एक्सपेरिमेंट करना, लेकिन जो भी एक्सपेरिमेंटेशन हुए उसका रिजल्ट इमीडिएटली नहीं मिला है। आज आप देखते हैं द टेक्नोलॉजिकल मार्वल एन एरोप्लेन। सोचने की बात है, एक 5.5 फुट का एक पायलट 30,000 फुट पर 400 लोगों को, उनके लगेज को, उनके कार्गो को, उनके ऑयल फ्यूल को लेकर वो बैलेंस करता है। नाउ दैट इज द वंडर ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जब एक पायलट 30,000 फुट में इतना बड़ा एरोप्लेन को अगर वो मैनेज कर सकता है, बैलेंस कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, तो क्या मैं अपने मन को मैनेज कर गुडनेस की तरफ एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता हूं क्या? सोचने की बात है। मैंने एक बार अपने स्टूडेंट से पूछा, अच्छा बच्चों बताइए, हु डिस्कवर्ड एरोप्लेन या हु इन्वेंटेड एरोप्लेन? आप लोग क्या जवाब देंगे? हु इन्वेंटेड एरोप्लेन्स? सभी लोग भाइयों को याद करते हैं, राइट ब्रदर्स। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, वो वीडियो फिर से आप देखेंगे, और जब वो वीडियो देखेंगे उस वीडियो के बाद मैं आपसे वही प्रश्न फिर से पूछूंगा, और फिर आप देखना कि कोई चेंज आपके उत्तर में आता है कि नहीं आता है। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल वीडियो विच स्पीक्स अबाउट द डिस्कवरी एंड द इन्वेंशन ऑफ एन एरोप्लेन।
एवर सिंस मैन स्टार्टेड टू थिंक, ही वांटेड टू फ्लाई, बट फ्लाइंग वाज स्ट्रिक्टली फॉर द बर्ड्स। continued to be so for thousands of years. Man, eternally optimistic, kept trying. Many successes, man kept trying. Through his genius and his inventiveness, he managed to get his machines off the ground. And sometimes he brought them down again. All over the world, early pioneers were making flying history. And in Italy, Count Emilio Ponticelli made what many people claimed was the first long-distance flight. There was no doubt about it. By 1910, flying had become the rage. Man had conquered the air, and people everywhere were all agog about those magnificent men.
इन सभी लोगों के लिए जरा जोर से तालियां बजाइए। दोस्तों, अगर मैं आप फिर से वही प्रश्न पूछूं कि एरोप्लेन को किसने इन्वेंट या डिस्कवर किया, तो क्या जवाब देंगे? राइट? नो, इट वाज अ सीरीज ऑफ प्रोसेस। किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया, लेकिन अगर हमें किसी को अगर क्रेडिट करना ही है, अगर क्रेडिट देना ही है, तो वी शुड गिव क्रेडिट टू दैट फर्स्ट पर्सन जिसने आसमान में पंछियों को उड़ते हुए देखा और उनके मन में विचार आया, वन डे ह्यूमन बींग्स कैन फ्लाई लाइक बर्ड्स। उनके दोस्तों ने क्या कहा? क्रैक, क्रेजी, गॉन नट्स एंड बोल्स, आपका दिमाग फिर गया है। लेकिन उसने उस संकल्प को करते करते टुडे वी आर एबल टू सी अ टेक्नोलॉजिकल मार्वल लाइक एन एरोप्लेन। बहुत सारे ट्रायल एंड एरर हुए, बहुत परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हुए, बहुत सारी असफलताएं हुई, लेकिन फिर फाइनली साइंस वॉज एबल टू डिस्कवर दिस एरोप्लेन। उसी तरह, इफ यू हैव टू एक्सपेरिमेंट गुडनेस, शायद बहुत लोग आपको कहेंगे, लेकिन आइंस्टीन एक बहुत सुंदर एक वर्ड कहते हैं, ही सेज इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज। उनका एक और स्टेटमेंट बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है, वो कहते हैं, एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज क्रिएटेड ट्वाइस, फर्स्ट इन द माइंड, नंबर टू इन रियालिटी। सबसे पहला वो श्रेष्ठ संकल्प आप अपने मन में लेकर आओ। तो एक है एक्सप्लोर गुडनेस, अच्छाई का खोज करिए। नंबर टू जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, उस अच्छाई को एक्सपेरिमेंट करिए, उसका प्रयोग करिए। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब आप उस अच्छाई को जब आप एक्सपेरिमेंट प्रयोग करेंगे, तो यू विल स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग गुडनेस। सारे कॉस्मॉस की तरफ से आपको वो रिजल्ट मिलने लगेगा कि यस, ऐसे स्वामी विवेकानंद एक बहुत अच्छी बात कहते हैं. वो कहते हैं एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिविनिटी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन एन इंडिविजुअल. अर्थात हमारे अंदर सबके अंदर वो दिव्यता है. हम स्वयं उसकी खोज करके उस दिव्यता को हम स्पर्श करें. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. और एक बार आप अपने अंदर की वो दिव्यता को अगर आप स्पर्श करने लगेंगे ना, तो आपको लगेगा यस द वर्ल्ड स्टार्ट्स बिकमिंग अ ब्यूटिफुल प्लेस फॉर मी. जीवन एक बहुत सुंदर अपॉर्चुनिटी है. वैसे भी आप लोग ने राइट न्यूटन्स का लॉ समझा होगा. वैसे हमारे बच्चों को न्यूटन का फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ याद नहीं रहता है, बट व्हाट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ? What is Newton's third law? For every action, there is an equal and opposite reaction. हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है. आज चारों तरफ जो negativity चल रहा है ना, right? That is also a chain reaction of negativity. लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी को एक chain reaction of positivity start करना पड़ेगा. आज से 80 वर्ष पहले परमात्मा जो ocean of positivity है वो इस धरती पर धीरे से उतरे और उन्होंने सबसे पहले उस दिव्यता को स्पर्श किया ब्रह्मा बाबा. फिर ब्रह्मा बाबा ने दादियां दीदियां और धीरे 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 चेन रिएक्शन बढ़ रहा है. आपको एक बहुत सुंदर अपॉर्चुनिटी मिली है यहां पर आकर इस सुंदर एक्सपेरिमेंट को देखना कि इतने सारे लोग जो हैं अपने कर्म करते हुए कर्म योगी होते हुए श्रेष्ठ रस्ते पर चलने का वो प्रयास कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी चलूं. But the greatest challenge was for Brahma Baba, जिनको इतना opposition के बाद भी वो सही रास्ते पर चले. But he took it an opportunity. और कहते जीवन में आगे बढ़ने के लिए you have to take a risk. Creativity का सबसे बड़ा सिद्धांत ये है. सभी एक रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन क्या मैं एक सही रास्ते पर चलूं क्या? That is very very important. I always tell my students this particular philosophy. कोई कैंपस आ रहा है आप सारे लोग, क्योंकि सारे लोग उस कंपनी में ज्वाइन कर रहे हैं, नॉट रिक्वायर्ड. आप देखिए कि आपको क्या अच्छा लगता है, आपके अंदर की भावनाएं क्या हैं, आपके इमोशंस क्या हैं, आपके फीलिंग्स क्या हैं. यहां पर आपको वो अपॉर्चुनिटी मिली है, द गुडनेस इन द सेल्फ. और जब एक बार आप अच्छाई पर काम करने लगते हो ना, तो न्यूटन का तीसरा फंडा, आप एक्चुअली स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग एंड एक्सपीरियंसिंग. मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं. मैं चाहता हूं कि अगले दो तीन दिनों में इस कैंपस में, क्योंकि वाइब्रेशंस बहुत अच्छे हैं, तो इस वाइब्रेशंस में वो अच्छाई का आप एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंस करेंगे. बट इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल चेन रिएक्शन.
Sometimes I lay under the moon, I think I...
being good, doing good, thinking good is actually my suraksha kavach. मैं दुनिया पर कोई मेहरबानी नहीं कर रहा हूं लेकिन मैं अपनी सुरक्षा के लिए कर रहा हूं. अ लास्ट एंड फाइनल, जीवन का लक्ष्य कहां जाना है. मैं बस आपको दो मिनट बताकर, आज से 20 वर्ष पहले जब मैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में गया तो बहुत जैसे मैं भटक रहा था. भटकना इन द सेंस जीवन में कुछ एक वैक्यूम था जिसको मैं ढूंढ रहा था. और मुझे याद आता है हमारी जो ब्रह्मा कुमारी बहन जिसने हमें एक हफ्ते का जो राजयोग शिविर कराया उन्होंने मुझे बहुत प्यार से एक बात बताई जहां पर मुझे जीवन का लक्ष्य समझ में आया. लक्ष्य ये उन्होंने बताया कि स्वामी भाई जस्ट इमेजिन करिए आपके घर में कोई एक बुजुर्ग व्यक्ति है राइट और इमेजिन करिए उन्होंने अपना शरीर अगर छोड़ दिया तो क्या करते हैं, उनकी तस्वीर हम लोग दीवार पर लटका देते हैं. और क्योंकि उनके प्रति सबका बहुत रिस्पेक्ट और रिगार्ड होता है तो सारे परिवार के सदस्य उस तस्वीर पर फूल माला चढ़ाते हैं. अब जस्ट इमेजिन करिए वही व्यक्ति उसी परिवार में एक छोटे से बच्चे के रूप में अगर जन्म लेता है, तब जब छोटू जब बड़ा होता है तो वो देखता है कि उसकी मम्मा एक तस्वीर पर फूल माला चढ़ा रहे हैं, तो बच्चा क्या कहेगा, मम्मा मैं भी इस तस्वीर पर फूल माला चढ़ाऊंगा. तो मम्मा बहुत खुश होकर, बच्चे बच्चे करो करो. और ये बच्चा क्या करता है, उस तस्वीर पर फूल माला चढ़ाता है, उसको यह बात समझ में नहीं आती है कि मैं अपनी ही तस्वीर पर फूल माला चढ़ा रहा हूं. राइट, यहां तक तो मुझे बात समझ में आ गई. फिर उस बहन जी ने कहा, स्वामी भाई इस हमारे देश में चौराहे पर भी बहुत लोगों के राइट स्टैच्यूज हम रखते हैं जिन्होंने देश के लिए कुछ महान कार्य किया. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि एक समय पर उस धरती पर थे और उन्होंने कुछ गुडनेस किया, उन्होंने लाइफ को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मान करके अपना श्रेष्ठ कर्म किया जिसके कारण आज भी लोग उनको याद करते. मैंने कहा दैट इज ऑल्सो परफेक्टली ओके. फिर आगे जो उन्होंने बात बताई दैट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल मास्टर स्ट्रोक. उन्होंने बहुत मुस्कुराते हुए कहा, स्वामी भाई आप इतने मंदिरों में जाकर इतनी देवी देवताओं के तस्वीर पर उनके मूर्ति पर फूल माला चढ़ाते हैं राइट, बताइए वो आज कहां पर है. मैंने सोचा कहां पर है मतलब कहीं ऊपर स्वर्ग वर्ग में होंगे. फिर बहन जी ने बहुत मुस्कुराते हुए कहा, ये एक रहस्य है और परमात्मा शिव इस धरती पर आकर ये रहस्य बताते हैं कि बच्चे एक समय पर यह धरती बहुत सुंदर स्वर्ग था और एक समय पर आप मनुष्य वहां पर देवी देवताओं के स्वरूप में थे, पूज्य थे. धीरे धीरे पूज्य से आज आप पुजारी बन गए हो. अब आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है, आपको एक अवसर मिला है जहां पर आप फिर से उस पुजारी से आप फिर से पूज्य बन सकते हो. तो आपके लिए खुशखबरी है दोस्तों, जब आप यहां से कोई भी मंदिर में जाएंगे ना और कोई देवी देवता के तस्वीर को देखेंगे तो थोड़ा प्यार से उनको देखना और महसूस करना कि उनके स्वरूप में वो क्या गुडनेस है. आज तक हम उनको पूजा करते रहे लेकिन परमात्मा से वो शक्ति लेकर आत्मा के दिव्य गुणों के स्वरूप बनकर क्या हम उनकी तरह पूज्य बन सकते हैं क्या, दैट इज इंपॉर्टेंट. इंजीनियर बनना, साइंटिस्ट बनना जीवन का कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है, इट इज नॉट समथिंग ग्रेट. लेकिन ज्योतिबिंदु परमात्मा कहते हैं कि आपको वैसा श्रेष्ठ देवी देवता बनना है और उसके लिए बहुत सिंपल है. अगर आपको IIT में एडमिशन चाहिए तो बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी. अगर आपको IIM में एडमिशन चाहिए तो माई गॉड यू हैव टू अपीयर फॉर द कैट एग्जामिनेशन. लेकिन एक श्रेष्ठ देवी देवता बनने के लिए इतनी मेहनत नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, बस सारा दिन अपने उस दिव्य गुणों से अपव्यवहार करते रहो. माई डियर फ्रेंड्स, आपके पास ये दो दिन का टाइम है, आज और कल, परसों से आपका रवाना होगा. ये दो दिनों में मैं चाहता हूं कि आप लोग के पास जितना भी वो श्रेष्ठ दिव्य गुण है उस पर आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, एक्सपेरिमेंट करें और आप उसको एक्सपीरियंस करें. मैं आपको आज एक छोटा सा होमवर्क देता हूं राइट, उस होमवर्क को आज हम बैठकर यहां पे करेंगे. आप में से सभा में से ऐसे कितने भाई बहने हैं जिनको बिल्कुल गुस्सा नहीं आता, वो जरा हाथ उठाएं. अच्छा, कोई अगर एक दो हाथ उठा देता था तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कहता था इनको भारत रत्न नहीं तो एटलीस्ट पद्मश्री पद्मभूषण तो देना चाहिए राइट. अच्छा, आप में से कितनों को जब कोई गुस्सा करता है उनका चेहरा बहुत अच्छा लगता है, वो जरा हाथ उठाए. अच्छा, वो भी हाथ नहीं उठाते, कोई अच्छा नहीं लगता ना. आप में से कितनों को लगता है कि मुझे शांत स्वरूप रहना, प्रेम स्वरूप रहना अच्छा लगता है, वो जरा हाथ उठाए, आजू बाजू कोई सो गया होगा तो बुला लीजिए, या भाई हो गया क्लास हो गया उठ जाओ, यस वैसे कोई सो नहीं रहा है, सबको अच्छा लगता ना, गुडनेस अच्छा लगता, आपने हाथ उठाया। तो एक काम करते हैं, अगले दो दिनों में इस अंदर की वो गुडनेस दिव्यता को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे और एक्सपीरियंस करेंगे। मैं आपको एक छोटा सा इनपुट देकर मेडिटेशन करके मैं वाइंड अप करूंगा, लेकिन उस मेडिटेशन करने के पहले परमात्मा ने जो लक्ष्य बताया है वो लक्ष्य का स्लाइड मैं आपको दिखा देता हूं। यस, कहते हैं हर रात के बाद एक नई दुनिया आती है, तो एक बहुत सुंदर दुनिया आने वाली है, राइट, जिसको हम लोग जन्नत कहते हैं, बहिष्ट कहते हैं, अल्लाह का बगीचा कहते हैं, गार्डन ऑफ एडन कहते हैं, पैराडाइज कहते हैं, किंगडम ऑफ गॉड कहते हैं, कृष्णपुरी कहते हैं, वैकुंठम कहते हैं, सत्युग कहते हैं, गोल्डन एज कहते हैं। आप में से कितनों को लगता है कि ऐसी सुंदर दुनिया में आने की आपकी इच्छा है, वो जरा हाथ उठाएं। तो आपको यह संदेश मिला, उसके लिए हम लोग दो दिन एक्सपेरिमेंट करेंगे, और दो दिन में क्या एक्सपेरिमेंट करेंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि लोगों को आप चेंज नहीं कर सकते, परिस्थितियों को परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज कर सकते हो, और क्या कर सकते हो, आप जो रिएक्शन करते हो ना, वो रिएक्शन करने के बदले में आप लोग रिस्पॉन्ड करेंगे, राइट, कुछ भी होता हम लोग इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं, एकदम गुस्सा आ जाता है और हमारा चेहरा एकदम है ना गुस्से से भर जाता है, लेकिन हम उसको बहुत बहुत पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेंगे। ओके, कोई पूछ रहा था रिएक्शन और रिस्पॉन्स के बीच में क्या अंतर है, तो रिएक्शन अर्थात वह कर्म जो हम बिना सोचे समझे अचानक करते हैं, इसलिए गुस्सा आ जाता है, लेकिन रिस्पॉन्ड करना मतलब सोचकर, समझकर, महसूस करकर, टोटल कंट्रोल के साथ जो व्यवहार करते हैं उसको हम लोग रिस्पॉन्स कहते हैं। तो अब हम दो मिनट मेडिटेशन करेंगे, और इसमें विशेष तौर पर कौन सा मेडिटेशन करेंगे आप ध्यान से सुनेंगे, खास करके अभी हमें शांत स्वरूप होना है, प्रेम स्वरूप और अंदर से शक्ति स्वरूप। तो कुछ क्षणों के लिए आप बैठेंगे, मैं आपको फ्लो चार्ट बता देता हूं क्या करना है। महसूस करेंगे कि आप बहुत शांत स्वरूप हो, यह हमारी अपनी अंदर की दिव्यता है, अंदर की गुडनेस है। तो आपका चेहरा एकदम शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, और जो शांत होता है, जो प्रेम स्वरूप होता है ना, वो अंदर से बहुत शक्तिशाली भी होता है, राइट। अच्छा, वहां बैठकर, यहां बैठकर हमने किया, फिर अपने मन में वो चित्र, वो दृश्य को लेकर आना कि कौन से समय पर आपको सबसे ज्यादा किस पर गुस्सा आता है, या सीन सामने लेकर आना, घर में, परिवार में, समाज में, रिश्तेदार में, ऑफिस में, या कहीं पर भी, कहां पर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और आप देखेंगे नजदीक कहीं ना कहीं गुस्सा आता होगा। तो अब आप क्या करना, अब आप जब योग का अभ्यास कर रहे हैं तो मेडिटेशन में अपने आप को कैसे हील करेंगे, वो सीन को सामने लेकर आना और देखना कि वो परिस्थिति वैसी की वैसी है, व्यक्ति वैसा का वैसे ही बिहेव कर रहा है, लेकिन मैं उसको बहुत पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड कर रहा हूं, मेरा कर्म कैसा है, ये आप अपने मन में वो चित्र एक दो बार अभी करेंगे तो एक्चुअल अपॉर्चुनिटी में आप देखेंगे आपको शक्ति मिलेगी, राइट। ये जो योद्धा जो होते हैं ना, जब युद्ध मैदान में जाते हैं तो क्या करते हैं, पहले से अपने अस्त्र शस्त्र को चेक करते हैं। तो आत्मा का अस्त्र शस्त्र हमारा मन और बुद्धि है, और जब मन बुद्धि को जब आप तैयार करते हो तो कर्म क्षेत्र पर आप श्रेष्ठ राजयोगी, श्रेष्ठ कर्मयोगी हो जाते हो, ठीक है। तो अभी हम एक दो मिनट के लिए करेंगे, कौन कौन करेंगे वो जरा हाथ उठाएं, वेरी गुड। किसके लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, और अगर आप ये श्रेष्ठ कर्म में पास हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली, बहुत सिंपल है, आप एक नई दुनिया में आने का आपका पासपोर्ट और वीसा कंफर्म हो जाएगा। तालियां तो बजाइए, बहुत अच्छा। ओके, तो हम अगले दो मिनट के लिए करेंगे, आपको बहुत क्लियरली इस बात समझ में आ गई है क्या करना है। मैं आपका एक छोटा सा अपना अनुभव बताकर आई विल वाइंड इट अप। मुझे याद आता है कि एक बार जब मैं अपने कॉलेज में गया, पढ़ा रहा था ना, सुबह सुबह का टाइम था, अचानक एक स्टूडेंट का मोबाइल रिंग हुआ, मुझे इतना जोर से गुस्सा आया, मैं पीछे मुड़ा, हु इज दैट स्टूडेंट, गेट अप। जब चिल्लाने लगा तो अचानक मुझे याद आया, अरे मुझे तो चिल्लाना नहीं चाहिए था, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, लेकिन इतना ज्यादा बीपी बढ़ गया और मेरा चेहरा एकदम लाल हो गया। और उस समय मुझे याद है, मैंने कहा बैठ जा बैठ जा। और जब मैं उसको कह रहा था ना, तो मैं अपने दिल को कह रहा था हार्ट अटैक नहीं होना, हार्ट अटैक नहीं होना, क्योंकि मैंने यहां के माइंड बॉडी मेडिसिन कॉन्फ्रेंस से एक बात सीखी कि जो बहुत ज्यादा गुस्सा करता है ना, उसको हार्ट अटैक होने के चांसेस हैं। एंगर, ANGER, जब भी एंगर आए ना, तो उसके सामने डी लगा दो। तो मैंने बच्चों से पूछा, बच्चों एंगर के सामने डी लगाने से क्या होता है? एक खड़े होकर कहता, सर एंगर के सामने डी लगाने से डैंगर होता है सर। मैंने कहा डैंगर नहीं है, डेंजर है, डेंजर। क्या बात करता है? तो ये तो मुझे पता था, लेकिन अचानक गुस्सा आ गया। तो फिर मैंने कहा अच्छा बैठो 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 बैठो। और फिर मैंने उस दिन फिर पढ़ाकर मैं वापस आया और सेंटर पर गया, तो दीदी को मैंने कहा, दीदी आज ना मुझे अचानक गुस्सा आया। बोला मारा वारा तो नहीं, क्योंकि पहले मारने के संस्कार थे। मैंने कहा मारा वारा नहीं, कुछ बोला भी नहीं, लेकिन मन में बहुत ज्यादा आ गया और उसको मैंने बहुत जोर से है ना चिल्लाकर उठाया भी था। बोला कोई बात नहीं, आप बाबा के कमरे में जाओ और बाबा को कह दो, है ना। तो हमारा हर जगह ना मेडिटेशन रूम होता है, तो मैं बाबा के पास गया और मैंने कहा बाबा आप तो शांति के सागर हो और नई दुनिया बना रहे हो और मुझे आज गुस्सा आ गया, तो क्या करना चाहिए? तो फिर बाबा ने कहा बच्चे आप शांत स्वरूप हो, उस दृश्य को फिर से करो, है ना, ये प्रैक्टिस है। तो मैंने फिर से वो सीन इमर्ज किया कि अभी अगली बार अगर किसी का मोबाइल रिंग होता है तो मुझे क्या करना चाहिए। अभी तो मैंने रिएक्ट किया, अब रिस्पॉन्ड कैसे करना चाहिए। मैंने बहुत अच्छी तरह से चित्र बनाया और दूसरा दिन जब मैं कॉलेज में जा रहा था तो बहुत प्यार से भगवान को प्रार्थना कर रहा था, हे ईश्वर आज किसी स्टूडेंट का मोबाइल रिंग होना चाहिए, रिंग होना चाहिए। किसी का रिंग नहीं हुआ, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था, सारे बच्चे अच्छे बच्चे। अच्छा दूसरा दिन, नो, एक हफ्ता हो गया, एक महीना हो गया, दो तीन महीने हो गए। एक दिन मैं अचानक पढ़ा रहा था तो अचानक एक स्टूडेंट का मोबाइल रिंग हुआ, और जैसे ही रिंग हुआ, क्योंकि मन बुद्धि में पहले से वो प्रोग्राम कर दिया था, फोल्डर ऑलरेडी था, धीरे से मुस्कुराते हुए उसको देखा, उठिए उठिए, बहुत प्यार से कहा। उसने फटाफट बंद किया, सॉरी सर सॉरी सर। मैंने कहा देखो बच्चे, इस हॉल इस क्लास में कितनों के पास मोबाइल है? सबने हाथ उठाया। तो मैंने कहा आप उनसे सीखना चाहिए ना, कितने अच्छे बच्चे हैं वो, आपके क्लासमेट्स हैं, जब मैं पढ़ाता हूं तो सारी दुनिया को मैसेज भेजते रहते हैं, यू शुड लर्न समथिंग फ्रॉम देम। तो जो स्टूडेंट खड़ा था वो कहता, सर सच्ची बात बताओ। मैंने कहा बताइए। बोला सर हर दिन मैं वैसे ही करता था, लेकिन आज मैं आपकी क्लास में इतना फोकस था कि मोबाइल के बारे में भूल ही गया था। मैंने कहा अच्छा। उस दिन मैंने एक बात सीखी, नाराज, जब आप राज को नहीं जानते हो तब आप नाराज होते हो। मैं तो अननेसेसरली भड़क रहा था, लेकिन वो तो मेरे क्लास में फोकस था, उसको मोबाइल याद नहीं थी, ये बात सत्य था। मैंने कहा अच्छा, इस क्लास में जितनों के पास भी मोबाइल है वो हाथ उठाओ। तो सबने हाथ उठाया। मैंने कहा मोबाइल उठाओ और मैं एक मिनट का टाइम देता हूं, सेट द बेस्ट रिंगटोन दैट इज अवेलेबल इन योर सेट। सर मैंने कहा सेट करो। यस सर, टक 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 सेट किया। मैंने कहा नाउ स्टार्ट प्लेइंग दिस रिंगटोन फ्रॉम दिस एंड टू दैट एंड। 5 मिनट आई हैड अ वेरी ब्यूटिफुल म्यूजिकल सेशन, गीत संगीत सुना, मुझे बहुत अच्छी तरह से क्लास लेकर मैं आ गया। 5-10 मिनट के बाद ना मुझे प्रिंसिपल के ऑफिस से फोन आया, स्वामीनाथन सर प्रिंसिपल वॉन्ट्स टू मीट यू। मैंने कहा अचानक? बोला कुछ मोबाइल वोबाइल का चक्कर है और डिसिप्लिन कमेटी भी बैठी हुई है। मैंने कहा अच्छा। जब मैं पहुंचा तो देखा सारे लोग बैठे हैं, तो प्रिंसिपल ने बुलाया, बोला स्वामीनाथन देखो यू आर अ रिस्पॉन्सिबल टीचर। मैंने कहा यस सर। बोला आपको पता है किसी का मोबाइल अगर पकड़ा जाता है तो उसका क्या एक्शन लेते हैं? मैंने कहा यस सर पता है, उनको मेमो लेते हैं, फाइन लेते हैं, फिर उनके पेरेंट्स को बुलाते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स को बुलाते हैं, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स को बुलाते हैं, मुझे पता है। बोला आज आप क्या कर रहे थे? गीत संगीत सुन रहे थे। इज दिस द वे ऑफ डूइंग इट? मैंने कहा सर आपने मुझे एक्सप्लेनेशन के लिए बुलाया तो मैं एक मिनट में एक्सप्लेनेशन दूं या आधा घंटा? बोला स्वामी तू बोलता बहुत ज्यादा है, एक मिनट के अंदर बोल। मैंने कहा सर मैं काफी बार डॉक्टर्स के कॉन्फ्रेंस में अटेंड करता हूं सर, तो मैंने वो डॉक्टर से मैंने एक बात सीखी है कि ऑपरेशन करने के पहले एनेस्थीशिया देना चाहिए सर। अगर एनेस्थीशिया दिए बिना अगर आपने किसी को ऑपरेट किया ना तो वो कैंडिडेट को ज्यादा दर्द देता है सर। तो आज जो मैंने किया ना सिर्फ एनेस्थीशिया दिया, ऑपरेशन तो अभी बाकी है सर। अब वो हमारे प्रिंसिपल PhD होल्डर एकदम समझ गए, स्वामीनाथन वेरी गुड एनेस्थीशिया, जाओ जाओ ऑपरेशन करो, सारे बच्चों को सुधारो, आप ही कर सकते हो। उसके बाद मेरे सभा में किसी का भी मोबाइल रिंग होता है ना मुझे कभी गुस्सा आता ही नहीं, क्योंकि मेरा मन में ऑलरेडी वो फोल्डर मैंने सेट कर दिया। ऐसे हर सिचुएशन में कभी गुस्सा आए तो इमीडिएटली एक मिनट के लिए वेट करो, अपना सिस्टम को सेट करो और धीरे धीरे आप देखेंगे यू विल बिकम एन एग्जाम्पल ऑफ स्टेबिलिटी, बैलेंस, कंट्रोल, इक्विलिब्रियम, राइट। चलिए मैं आपका बस 1-2 मिनट लेता हूं, 2 मिनट में हम आज का सेशन वाइंड अप करेंगे। आराम से बैठना, हम ये 2 मिनट में मेडिटेशन करेंगे जो मैंने अभी आपको बताया। जो मैं बोल रहा हूं वो ध्वनि आपके मन तक पहुंचेगी, इमीडिएटली आप उसका चित्र निर्माण करेंगे और जो भी मन बुद्धि के साथ साथ में ट्रैवल कर रहे हैं मतलब आपकी एकाग्रता बहुत अच्छी है. आई जस्ट टेक वन मिनट. ओम शांति. सबसे पहला प्रश्न, मैं कौन हूं? महसूस करिए आप शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप और आप बहुत शक्तिशाली हो. यू आर अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग. अब आप मन में उस दृश्य को लेकर आइए जहां पर आप अचानक गुस्से में आ जाते हो. वो परिस्थिति, वो लोग, वो सिचुएशन. परिस्थिति वैसे के वैसे ही है, लोग वैसे के वैसे ही व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन आप गुडनेस के साथ किस तरह से आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं ये आपके कंट्रोल में है. शांत स्वरूप होकर, प्रेम स्वरूप होकर, शक्ति स्वरूप होकर आप कर्मयोगी बन रहे हो. और ऐसे करने से आप गुडनेस का एक चेन रिएक्शन का हिस्सेदार बन जाते हो. फील गुड अबाउट दिस एक्सरसाइज. आप सिचुएशन पर विजयी हुए इस अच्छाई को महसूस करते हुए धीरे धीरे आप वापस आइए. ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति. थैंक यू वेरी मच. ओम शांति.
ओम शांति. बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी भाई का. आप सब भी थैंक्स करना चाहेंगे ना? कैसे करेंगे? वाह स्वामी भाई, वाह स्वामी भाई, वाह हम सब, वाह. तो आपको बहुत बहुत